मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 14 नवंबर 2018 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल मैंने एक उपन्यास के एक छोटे से अंश का वाचन आप सबके लिए किया था और मैंने ये एक तरीके से कह लीजिए कि होमवर्क जैसे ही आप सबको दिया था कि आप सब अपने अपने ढंग से इसके अर्थ निकालें और उसका सच पूछे तो मजा ही अलग होता है और इनफैक्ट सही मायने में तभी हम उसका उपयोग कर पाते हैं। अगर मैं अपनी बात कह दूं तो कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि मैंने कोई चीज आपके ऊपर थोप दी हो और जब कोई बात थोपी जाती है तो मैं तो कम से कम इस विश्वास का हूं कि फिर उसका असर लगभग लगभग शून्य सा ही हो जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने उस अंश से अपने अपने लिए अपने अपने उपयोग की बातें निकाली होंगी और आप में से कुछ दोस्तों ने ईमेल के जरिए अपनी बात मुझ तक पहुंचाई भी है और जो भी बातें आप लोगों ने ईमेल के जरिए मुझे बताई हैं या आगे आप बताएंगे वो सब कुछ शिरोधार्य है क्योंकि वह आपकी अपनी समझ है और किसी की भी समझ को इस तरीके से चुनौती नहीं दी जा सकती, दी जानी भी नहीं चाहिए क्योंकि साहित्य की यही ताकत होती है कि वो जितने लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है उतने तरीके से समझी भी जाती है। दोस्तों लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों न इसी विषय को आगे थोड़े से बढ़ाने की कोशिश की जाए क्योंकि ये विषय जिंदगी को समझने के लिए मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और खासकर आज हम अपने आसपास जो समस्याएं देख रहे हैं, आसपास ना कहीं अपनी जिंदगी में जो समस्याएं देख रहे हैं उनके केंद्र में कहीं ना कहीं यह बात है जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। तो फिर मैंने फैसला किया कि इसी मुद्दे पर कुछ और बातें अगर कर ली जाएं तो बेहतर ही होगा। तो आइए फ्रेंड्स मैं कल की बात को आगे बढ़ाता हूं। कल जो मैंने अंश आपके सामने पेश किया था आपको ध्यान होगा कि उसके आखिरी से थोड़ा सा पहले उसमें एक वाक्य था और वो वाक्य था जब वो पक्षी मर जाता है उसी पैरा का अंतिम वाक्य था उसे पिंजरा याद ना रहा यानी कि वो पक्षी मर चुका है, औरत को बहुत दुख हो रहा है और दिन भर वो उसी के बारे में सोचती रही यानी उस पक्षी के बारे में सोचती रही। इसके बाद उपन्यासकार ने लिखा है उसे पिंजरा याद ना रहा, वो तो बस उन्हीं ख्यालों में खोई रही जब उसने पक्षी को पहली बार बादलों के बीच संतुष्ट और उन्मुक्त उड़ान भरते देखा था। ये सबसे ज्यादा टची सबसे ज्यादा छू लेने वाली पंक्ति है। दोस्तों ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपके लिए भी बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। आप मुझसे बेहतर पंक्तियां इसमें ढूंढ सकते हैं और ये मैं पूरी विनम्रता और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अब आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसे पिंजरा याद ना रहा। पिंजरा उसका खुद का था, इसी पिंजरे में तो लाकर के उसने उस पक्षी को बंद किया था जो उन्मुक्त उड़ान भर रहा था और जिसके चेहरे पर जिसके शरीर के हाव भाव में एक गजब किस्म की संतुष्टि दिखाई दे रही थी और उसी ने उसको आकर्षित किया था कि देखो ये पक्षी है और कैसे कितने खुलेआम तरीके से स्वतंत्रता के साथ इतने विराट इतने विशाल आकाश में वो उड़ रहा है, इसको कितनी आजादी है, कितनी खुशी से भरा हुआ है, कितनी प्रसन्नता, कितना आह्लाद इसके अंदर है। उसी को देख करके उसके मन में उसके प्रति आकर्षण का भाव पैदा हुआ और बाद में वो क्या करती है, अपने पिंजरे में उसे कैद कर देती है, राइट। तो अब आप देखिए कि उसको अपना पिंजरा याद नहीं आ रहा है, उसे वो पहली ही बातें पहली की चीजें याद आ रही हैं जिसने उसे आकर्षित किया था, यानी कि जो बात थी वो शुरू की थी। अंत में भी हमें वही बातें याद रह जाती हैं। दोस्तों यहां मैं एक बात का स्मरण कराना चाहूंगा अपने 9th बैच के अभी आए हुए स्टूडेंट्स को और खासकर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने महसूस किया है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं और व्यक्तिगत रूप से जब उनसे बातें होती हैं तो वो मुझे सूचित करते हैं कि वो लाइफ मैनेजमेंट सुनते हैं और लाइफ मैनेजमेंट ने उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक रोल प्ले किया है। आप सबके ईमेल के जरिए भी मुझे यह बात जानने का सुअवसर सौभाग्य कह लीजिए कि मिलता रहता है। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि याद करने की कोशिश कीजिए कि जब हम लोग निबंध के बारे में बात कर रहे थे और खासकर हमने 2018 में एक पूछे गए एक निबंध के पॉइंट्स निकालने की एक्सरसाइज क्लास में की थी, तब मैंने आप सबसे एक वाक्य कहा था कि निबंध की एक खूबसूरती इसमें भी होती है कि किस तरीके से हम एक सामान्य से सामान्य विषय को फिलॉसफी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर सामान्य विषय को भी हम फिलॉसफिकल अंदाज में पेश कर जाते हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर पर उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कल का जो अंश है उसको आप सब समझ गए हैं कि किस तरीके से जब आप किसी की स्वतंत्रता को बाधित कर देंगे तो सच यह है कि उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा। जैसे कि उस पक्षी का सौंदर्य नष्ट हो गया, सौंदर्य ही नष्ट नहीं हुआ बल्कि सच पूछिए तो पक्षी ही नष्ट हो गया, यानी कि प्रेम ही नष्ट हो जाएगा। ये सामान्य तौर पर है, यानी कि आप उसे स्वच्छंद रखिए, उसे गुलाम मत बनाइए। लेकिन इसकी एक फिलॉसफिकल अभिव्यक्ति भी हो सकती है, एक दार्शनिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है, और दार्शनिक अभिव्यक्ति कुछ इस तरीके से हो सकती है कि जिन चीजों के प्रति पूर्व में हमारे मन में आकर्षण का भाव होता है, जिन चीजों से जिन गुणों से हम आकर्षित होते हैं, प्राप्त करने के बाद वही हमारे लिए प्रतिकर्षण का कारण बन जाते हैं। या आप कह लीजिए कि जिन तथ्यों के विरोध में हम खड़े होते हैं, जब हम उन तथ्यों को पा लेते हैं तो हम फिर उसी के लिए प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। ये इसका एक फिलॉसफिकल एक्सप्रेशन हुआ, यानी कि बात वही है लेकिन आप उसे ऑब्स्ट्रेक्ट तरीके से या यूं कह लीजिए कि सैद्धांतिक तरीके से व्यक्त कर देते हैं। और जब निबंध में आप एक दो पंक्तियां ऐसी डाल करके उसे अंडरलाइन कर देते हैं तो बट नेचुरल है कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके इस प्रतिभा से, भाषाई सौंदर्य से, विचारों की गहराई से प्रभावित हुए बिना अपने आप को बचा नहीं सकता, वो प्रभावित होगा ही। मित्रों, क्या हम सब की जिंदगी में ऐसा ही नहीं होता है? मैं चलिए एक छोटा सा उदाहरण आपको अपने गांव का देता हूं। मैं अपनी ही बात आपके सामने रख रहा हूं, बट नेचुरल है कि क्योंकि उसमें मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है उसका और उसी को मैं ज्यादा ईमानदारी के साथ रख सकता हूं। आप सबके पास भी इस तरह के अपने अपने अनुभव निश्चित रूप से होंगे, आप भी सोच करके देखिए। मैं जब अपने गांव में था, शुरू के 18 साल मैंने अपने बड़े प्रेम खूबसूरत गांव में बिताए हैं, तो दोस्तों जब थोड़ी सी समझ पैदा हुई, मैं समझता हूं कि जब मैं 14 साल के करीब का हुआ तो गांव की कुछ ऐसी चीजें थी जिससे ऊब होने लगी थी। डेफिनेटली मैं इसे पूरे खुले हृदय से स्वीकार करता हूं। गांव में राजनीति, आंतरिक राजनीतियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, साथ ही साथ जो संकीर्णताएं, सोच की जो संकीर्णताएं होती हैं जाति को लेकर के और दूसरी बातों को लेकर के, वो दिखाई देने लगी थी। वो तो पहले भी थी लेकिन अब ये कह लीजिए कि थोड़ी सी समझ विकसित हो गई थी। गुटबाजियां होने लगी थी, अपराध बहुत ज्यादा होने लगे थे, बात बात पर सिर फोड़ देना, ये चीजें सामान्य सी हो गई थी। तो अंदर ही कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव भी महसूस होता था। और इसके बाद फिर जब थोड़ा सा शहर आना जाना हुआ तो शहर की चीजें आकर्षित करती थी कि हमारे गांव में देखिए एक ऐसा भी होटल भी नहीं है कि अगर भजिया खाने का मन कर रहा है तो जाकर के वहां भजिया खा सके, अगर छोले खाने का मन कर रहा है तो जाकर के 25 पैसे का छोला खा ले। अब तो जिला बन गया सूरजपुर, जहां हम लोग कभी कभी जाते थे तो वहां एक छोटी सी दुकान थी जहां 25 पैसे की एक प्लेट छोला मिलता था, तो वो छोला मुझे बहुत पसंद आता था लेकिन गांव में ऐसे कोई गुंजाइश नहीं थी। केला खाने का मन करता था, शहर जाते थे तो गांव में आप केला नहीं खा सकते, यानी कि इस तरह की सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव था। कोई बीमार पड़ गया तो फिर कोई डॉक्टर नहीं है उस तरीके से, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर तो एक थे लेकिन वो सामान्य तरीके के डॉक्टर थे, तो बट नेचुरल है कि अगर थोड़ी सी भी गंभीर बीमारी हुई तो आपको शहर जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीजें थी जिसने गांव के प्रति कहीं ना कहीं एक शिकायत का भाव भी पैदा कर दिया था। तो लगता था कि यार गांव छूट जाए जो अच्छा है, गांव छोड़ दिया, राइट। तो अब जब छोड़ दिया तो अब वो गांव फिर से बहुत भयानक रूप, भयानक तो नहीं कहना चाहिए, बहुत अधिक याद आता है। सपनों में गांव याद आता है, गांव याद आता है, वही गांव याद आता है। अब आप देखिए कि क्या था, जब आप वहां थे ठीक है तो आपको कुछ शिकायत थी, अब जब छूट गया तो अतीत अब बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब हम वहां हैं तभी उसमें पूरी तरह से डूब जाएं तो शिकायत खत्म हो जाएगी। भले ही दो बदलाव हो तो फिर आप नए को स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वहां हैं तब तक तो उसे पूरी तरह से अंतर मन के रूप में स्वीकार करें, कोई शिकायत नहीं। अक्सर यह होता है मित्रों। अब मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर मैं उस गांव में लौट जाऊं तो मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, हालांकि वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो मित्रों, जैसे ही कोई चीज हमें प्राप्त होती, शहर प्राप्त हो गया, गांव छूट गया तो गांव प्रिय लगने लगा, जब गांव मिला हुआ था तब उससे शिकायतें हो गई थी, शहर मिल गया तो शहर से शिकायत होने लगी, अब गांव से फिर प्रेम हो गया। दोस्तों, बस अब लास्ट में मुझे एक पंक्ति याद आ गई है, एक गजल की पंक्ति है कि जिंदगी में दो ही घड़ियां मुझ पे बीती हैं कठिन, जिंदगी में दो ही घड़ियां मुझ पे बीती हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। ये है जिंदगी, इसी तरह से होती है, एक बहुत विचित्र किस्म की चीज है। मुझे लगता है कि यदि हम इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं मित्रों। इसके हर एक पल का हम आनंद ले सकते हैं, उस अतीत का हम वर्तमान में लेते हैं जो हमारा बीता हुआ है, क्यों नहीं, वह जो अतीत जो हम जब हमारा वर्तमान था तभी हम उसका आनंद लें। क्या आपको नहीं लगता कि इससे जिंदगी की गुणवत्ता एकदम से बदल जाएगी? बदल जाएगी। मेरी इन बातों पर थोड़ा सा आप विचार करें और अपने अपने ढंग से अपने अपने लिए रास्ते तैयार करें मित्रों, खूब मजा आएगा। इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।